नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संकट के मुद्दे पर भारत ने अस्थायी शांति की उम्मीद जताई। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया होगी शुरू। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत करते हुए अस्थायी शांति की उम्मीद जताई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत हमेशा से कूटनीति और संवाद के जरिए तनाव कम करने का पक्षधर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता पर बल देते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई है।
भारत हमेशा से ही शांति के पक्ष में रहा है। हम शांति के हर पहल का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि पश्चिम एशिया की यह पहल यूक्रेन में भी शांति बहाल करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।
संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सामान्य आपूर्ति जारी है। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई ताकि घरों तक 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति को विनियमित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएनजी कनेक्शनों का विस्तार किया है और व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति को भी चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया है।
घरेलू एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और लगभग 91% रिफिल की डिलीवरी डीएसी कोड के साथ हो रही है। और ये 91% जो फिगर है वो ये इंश्योर करता है कि डाइवर्जन न हो।
इधर प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि जिलाधिकारी एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा के लिए लगातार गैस एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशियम युक्त उर्वरकों पर सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर लगभग 41,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।
खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जिसमें 41,000 करोड़ रुपए का ये कंप्लीट सब्सिडी का प्रोग्राम है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को 5.25% बनाए रखा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लगभग 58 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 2/3 ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। मुद्रा योजना के तहत 4 श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं। इसके तहत शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख, तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस के तहत 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। इंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता ने साबित कर दिया है कि जब लोगों को सही अवसर मिलते हैं तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से देश भर में पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण का आयोजन करेगा। इसका विषय है जीवन के पहले 6 वर्ष में मस्तिष्क का अधिकतम विकास। पोषण के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक स्वस्थ बच्चा ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव है। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हर माँ और बच्चे के लिए संपूर्ण पोषण सुनिश्चित करने का एक जन आंदोलन है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज पटना में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी।
सरकार का फॉर्मेशन तो मुख्य बात परसों शपथ लेंगे, उसके बाद जब वो इस्तीफा देंगे तब एनडीए के सभी दल बैठेंगे, आपस में निर्णय होगा, तब सरकार का गठन होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 4954 ANM को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य सरकार ने जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सह राज्य जनगणना समन्वयक CK अनिल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 36,79,000 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति हुई। आज पटना में पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अभी तक 12,600 मीट्रिक टन चावल की प्राप्ति भी हो चुकी है।
जो हमारा लक्ष्य था अधिप्राप्ति का 36,85,000 मैट्रिक टन के विरुद्ध 36.79 लाख मैट्रिक टन अधिप्राप्ति कर पाए। दिनांक 6/4/2026 तक चावल प्राप्ति हेतु कुल लक्ष्य 25 लाख मैट्रिक टन के विरुद्ध 12,600 मैट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केंद्रों पर जमा कराया जा चुका है। शेष चावल की प्राप्ति अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 15/6/2026 तक कर ली जाएगी।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार आज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित बिहार गौरव महोत्सव 2026 में शामिल हुए। उन्होंने बिहार की गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। कटिहार रेलवे स्टेशन पर सोलर पावर प्लांट के माध्यम से विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन श्रीवास्तव ने आज 1.1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इससे रेलवे को प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपए तक की बचत होगी।
सोलर सिस्टम इन्होंने 1.1 मेगावाट का लगाया है, उससे साल भर में इनको करीब करीब 1.4 करोड़ का एडवांटेज है। इस समय नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे 31 मेगावाट हम लोग अपनी कैपेसिटी सोलर की बना चुके हैं। आने वाले इस साल में 26-27 की कोशिश करेंगे 4550 मेगावाट तक पूरा टन कम करेंगे और कटिहार डिवीजन अभी 3 मेगावाट में है, 10 मेगावाट तक सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे।
अररिया के जिलाधिकारी विनोद तुहन की अध्यक्षता में आज मिशन शक्ति योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर जिले में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नगर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा विज्ञान और तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देश दिया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गया, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, पटना और समस्तीपुर समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान है।
दिनांक 9 अप्रैल 2026 को राज्य के पूर्वी एवं उत्तर मध्य जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सारण जिले के टोरीगंज थाना में पदस्थापित दारोगा मोहित मोहन को 9,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा एक मामले में शिकायतकर्ता को मदद करने के एवज में घूस ले रहा था। समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ियाही घाट पर 3 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ स्थित एक रेस्तरां में विषाक्त भोजन खाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बीमार हो गए। पुलिस ने इस मामले में रेस्तरां को सील कर खाद्य पदार्थ के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने मधुबनी में अस्थायी लोक अदालत का गठन किया है। सेवानिवृत्त जिला और अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह लोक अदालत के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि मोहम्मद कमरे आलम को गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के पौराणिक और धार्मिक स्थल गजनाथाम में आज से 2 दिवसीय गजना महोत्सव प्रारंभ हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन औरंगाबाद के सांसद अभय कुमार सिन्हा, विधान पार्षद दिलीप कुमार सिंह और विधायक ललन राम ने संयुक्त रूप से किया। रोहतास जिले के शिवसागर में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हुई। सेमिनार के पहले दिन आज भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा नई पीढ़ी के लिए इसकी उपयोगिता पर चर्चा हुई। गया जिले के बांके बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राज्य सरकार द्वारा 1,00,000 रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। सुपौल जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 70 मोबाइल धारकों को चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे गए। वहीं शेखपुरा में 25 लोगों को उनके लापता मोबाइल सुपुर्द किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संकट के मुद्दे पर भारत ने अस्थायी शांति की उम्मीद जताई। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया होगी शुरू। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।